તારીખ 29/1/1998, ડાયરીના બોલ નંબર 109 અને 110 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 164.
આત્મભાવના સર્વોત્કૃષ્ટ પરમ શાંત રસમય સમરસ સ્વભાવી અનંત સુખધામ કેવળ અંતર્મુખ સ્વયં અભેદ સહજ અનુભવ રૂપ છું. તેથી સમસ્ત પરમાં ઉપેક્ષા સહજ છે. શું છે? સ્વરૂપ ભાવના. સ્વરૂપની ભાવનાનો પ્રકાર છે કે આ જગતમાં હું સર્વોત્કૃષ્ટ છું, મારા સ્વરૂપમાં પરમ શાંત રસ સ્વરૂપભૂતપણે રહેલો હોવાથી પરમ શાંત રસ મય છું હું, વાળો છું એમ નહીં, તે મય છું. મારું સ્વરૂપ સમરસ સ્વભાવી છે. સમરસ સ્વભાવી એટલે વિષમરસ જેમાં નથી રાગ અને દ્વેષનો, રાગ અને દ્વેષનો વિષમરસ જેમાં નથી એને સમરસ કહે છે. એવો છું, અનંત સુખનું ધામ છું. પ્રદેશે પ્રદેશે અનંત સુખ ભરેલું છે. શબ્દ તો વહી કા વહી રહેગા. મેં સર્વોત્કૃષ્ટ હું, પરમ શાંત રસમય હું. મય મેને કોઈ શાંત રસ કા સંયોગ નહીં હુઆ હૈ, મેરા સ્વરૂપ હી એસા હૈ. મેં પરમ શાંત રસ સે ભરા હુઆ હું, તન્મય હું, સમરસ સ્વભાવી હું. રાગ દ્વેષ કા વિષમ રસ મેરે મેં નહીં હૈ. અનંત સુખધામ હું. મેરે એક એક પ્રદેશ મેં, પ્રત્યેક પ્રદેશ મેં અનંત 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 સુખ ભરા હૈ. એસા દેખતે જાના. ભાવના મેં ક્યા હોતા હૈ? એસે વિકલ્પ ભી કોઈ કરતે હૈ ઔર એસા મેં હું એસા દેખના હૈ. દો મેં ફરક હૈ. વિકલ્પ મેં કલ્પના કા અવકાશ હૈ, કુછ ને કુછ કલ્પના હમ કર લેતે હૈ. યહાં એસા હમકો દેખના હૈ. તો આપ કહેંગે કે દેખે કૈસે? દિખતા તો નહીં હૈ સામને સ્વરૂપ, ફિર કૈસે દેખે? યે બાત સામને આયેગી. કોઈ ચીજ દિખતી હૈ તો દેખે, લેકિન હમને એસા હમારા સ્વરૂપ તો દેખને મેં નહીં આયા અભી તક, દેખા ભી નહીં તો કૈસે દેખે? તો એક જો સામાન્ય જ્ઞાન હૈ ઉસમે યે સબ કુછ હૈ, ઉસ પર સે એસા સ્વરૂપ દેખના. જૈસે કે મેં પરમ શાંત રસમય હું, તો જ્ઞાન સામાન્ય તો શાંત રસમય હૈ, ઇસમે અશાંતિ કહાં હૈ? અશાંતિ તો કષાય ભાવ મેં હોતી હૈ, જ્ઞાન મેં કહાં હૈ? એક જ્ઞાન કો, જ્ઞાન કી પર્યાય કો, સામાન્ય જ્ઞાન કી પર્યાય કો અનંત ગુણ કા રૂપ હૈ, મને સભી ગુણ કા રૂપ હૈ. ભાવના મેં ક્યા હૈ? गुण है वो हमारे स्वरूप की विशिष्टता है। अनेक विध विशिष्टता से हम हमारे विशिष्टता संपन्न विशेष स्वरूप को देखते हैं। ये भावना का एक सही तरीका है। वैसे तो लोग घोटते हैं, रटते हैं, वैसा नहीं, हमको देखना है ऐसा, और वो भी प्रकट ज्ञान पर्याय में ऐसे भाव है, उस पर से पूरी वस्तु को देखना है, पूरे पदार्थ को ऐसा देखना है। ये तो सैंपल है, जो ज्ञान है वो तो सैंपल है। जैसे ज्ञान निराकुल है तो सुख धाम है, और अनंत काल से वैसा है तो अनंत सुख का धाम है। सुवर्ण पत्थर में सोने के रजकण देखे, जो उसका तजग्न होता है, पुस्तर शास्त्री उसको कहते हैं, जियोलॉजिस्ट, वो खान को देखता है इसमें क्या, पार्टिकल्स को नहीं देखता, रजकण को नहीं देखता, पत्थर में खान को देखता है कि अगर ये सैंपल जिस यहां से आया है वहां तो बड़ी सोने की खान है, हजारों साल तक निकालते रहो, देखो तो बड़ा पर्वत है, जहां से हम सैंपल लाए वो तो बड़ा ढेर था, पर्वत था, उसमें तो हजारों टन सोना निकल सकता है उसमें से। इस तरह से वो सैंपल पर से पूरी खान को देखता है, वैसे अनंत सुख धाम हो, सुख का सैंपल से, निराकुल ज्ञान से अनंत सुख का धाम देखना चाहिए। और केवल अंतर्मुख हूं क्यों, कि ज्ञान ज्ञान को बेचता है, मैं ये सब देखता हूं वो ज्ञान नहीं लेना है। जो ज्ञान सामान्य स्वयं को वेदन करता है उसमें कहां बहिर्मुखता है, ज्ञान ज्ञान को बेचता है वही अंतर्मुख बना है। अगर उसको देखने जाएंगे तो देखने वाला को अंतर्मुख होना पड़ेगा, तो अंत तत्व है ये, पर्याय का अंतरंग होने से जो ज्ञान बाहर जाता है उसको अंतर्मुख होना पड़ेगा। तो अंतर्मुखता में ये देखा कि ज्ञान ज्ञान को बेचता है अनंत काल से, अनादि अनंत वो स्थिति है, इसलिए परिपूर्ण अंतर्मुख है। मैं केवल अंतर्मुख हूं, स्वयं ऐसा सभी प्रकार की विशिष्टताओं से अभेद सहज अनुभव रूप हूं, ऐसा ही मुझे अनुभव हो गया, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। और ऐसा होने से समस्त पर में मेरी उपेक्षा है, मेरे को कहीं भी पर में सावधानी करने की आवश्यकता नहीं है, समस्त पर में सहज उपेक्षा मेरे मुझे होती है। ऐसा होने से, मेरा स्वरूप ऐसा होने से समस्त पर में मेरी उदासीनता आ जाती है, कि मेरे से सब शून्य है और कहीं भी रस लेने योग्य कोई चीज दिखती नहीं है। तो यो देखने से और देख करके भाने से आत्मरस बढ़ता है। आत्मभावना में क्या होता है, आत्मरस बढ़ता है। जितना जितना आत्मरस बढ़ता है उतना उतना अन्य भाव का रस टूटता जाता है, और वही सुखी होने का बहुत बढ़िया उपाय है। सुखी होने का एक बहुत बढ़िया उपाय है ये। भावना जैसे कोई चीज नहीं है, पुरुषार्थ ज्ञान निर्मलता सभी गुण का उत्पादक आत्मभावना है। कितना बोल लिखा है मुंबई में, लिखा है वैसे मेरा मेरा लखेला था है क्या चालू था ना सहमत है जितने आपको लिखा कर देता था सूत्र मन लगे एक सौ दस में भी आत्मभावना है। तू रुचता जगत नी रुचि आल से सो, समय सार निष्पत्ति है ना, समय सार मैंने निज परमात्मा। अगर हमको हमारा स्वभाव रुचता है रुचि में, तो पूरे जगत की रुचि छूट जाती है। आलसन और सहज छूट जाती है, इसका नाम आलस है। छोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, एक स्वरूप की रुचि में पूरे जगत की रुचि छूट जाती है। जगत के समस्त पर पदार्थ प्रति के आकर्षण छूट जाए, आसक्ति छूट जाए, और एकमात्र स्वस्वरूप का खिंचाव रहा करे, ऐसा परम अद्भुत आश्चर्यकारी अनंत महिमावंत आत्मस्वरूप है। आत्मभावना में स्वरूप की महिमा होती है। कैसा है कि ऐसे तो जगत के पदार्थों का आकर्षण छूटना आसान नहीं है। जीव ने सुख बुद्धि से बहुत रस लिया है, जीव ने सुख बुद्धि से बहुत रस लिया है, इसलिए आकर्षण छूटता नहीं। परंतु अगर स्वरूप की रुचि होती है, आत्म स्वरूप की रुचि होती है, निज स्वरूप की रुचि होती है, तो सहज मात्र में जगत के सभी पदार्थ के प्रति का आकर्षण छूट जाता है। तो वो आकर्षण छूट जाता है तो जगत के पदार्थ प्रति का खिंचाव छूटता है, वो खिंचाव ट्रांसफर हो जाता है, स्वरूप का खिंचाव चालू हो जाए, स्वस्वरूप का खिंचाव, एकमात्र स्वस्वरूप का खिंचाव सहज रहा करता है रुचि के कारण से, स्वरूप की रुचि के कारण से। ऐसा परम अद्भुत आश्चर्यकारी, चमत्कारिक, अनंत महिमावंत आत्मस्वरूप है। अपने आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, चमत्कारिक है। उसकी महत्ता जितनी भी की जाए कम है। भगवान की, जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी आत्मस्वरूप की पूरी महिमा नहीं कर सके। क्यों? कि वाणी पुद्गलात्मक है, जड़ है, और चैतन्य का गुण गाने का, पूरा गुण गाने की उसमें ताकत नहीं है। वो गुण गाती तो है अवश्य, लेकिन अधूरा। कितना अधूरा, पूरा गुण को नहीं गा सकते। क्योंकि स्वरूप की जो महत्ता है, स्वरूप में जो गुण है, वो केवल अनुभव से ही, अनुभव गोचर किया जाता है, अनुभव से अनुभव गोचर किया जाता है। विकल्प में भी पूरा नहीं आता तो वाणी में तो कहां से आएगा, सवाल ही नहीं। ऐसा परम अद्भुत, आश्चर्यकारी, अनंत महिमावंत आत्मस्वरूप है। अरे, पूर्ण केवल ज्ञान आदि पर्याय भी, पर्याय की भी जिसे अपेक्षा नहीं, ऐसा परम निरपेक्ष आत्मस्वरूप है। फिर दूसरे की अपेक्षा कहाँ है? हमारी केवल ज्ञान की पर्याय, उसकी अपेक्षा रखे, ऐसा आत्मस्वरूप नहीं है। तो फिर छोटे मोटे बाह्य पदार्थ और दूसरी व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखना, वो हमारी कितनी दीनता है, वो हमारी कितनी दीनता हुई। दीनता का फल में जीव मुफ्त में बिकता है, ये दीनता के फल में क्या होता है कि जीव मुफ्त में बिक जाता है। कैसे? कि जैसे सब्जी लेते हैं तो हम वो बेचने वाले को कभी कहते हैं कि वो धनिया पत्ती थोड़ी और दे दो मुफ्त में, हाँ, मीठा लिमड़ा है, ऐसा कोई मसाले की चीज है ना, ऊपर से ले लेते, पैसा इसका नहीं देते। वो चलो 10-20-25 रुपया का लिया है तो धनिया भाजी थोड़ा और दे दो। वो धनिया भाजी में जीव है कि नहीं है, वो मुफ्त में बिका कि नहीं बिका? कौन मुफ्त में बिकता है? दीनता करने वाला, अपेक्षा रखने वाला, इसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, उसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, उसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, इसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए। वो धनिया भाजी में बिकेगा, क्योंकि दिन तक बहुत किया, सही कर्म बंधेगा। मेरा स्वरूप निरालंब निरपेक्ष है। किसी का आलंबन, आधार लेना, वो भी मेरे स्वरूप में नहीं है, और किसी की अपेक्षा रखना, वो भी मेरे स्वरूप में नहीं है। अरे, केवल ज्ञान की पर्याय की भी मैं अपेक्षा नहीं रखूं, ऐसा मेरा स्वरूप है, तो फिर दूसरी चीज तो इसके आगे कोई है ही नहीं। ये तो परिपूर्ण मोक्ष की पर्याय है, परमानंद की पर्याय है। स्वरूप नमता नहीं, अपेक्षा रखता है उसको नमता, नमन नमना पड़ता है। दीनता वाला तो नमन नहीं करता है, स्वरूप किसी को नहीं नमता, स्वरूप को सब कोई नमता नमता है, स्वरूप किसी को नहीं नमता। उसमें वॉकिंग में वो बात चली थी, राम सिंह का दुहा पहुड़े ने, उसमें बोलते कि भाई जैसे सिद्ध परमात्मा है किसी को नमते नहीं, जब अपना सिद्ध परमात्मा को जानते हैं तो वो भी पता चलता है कि मेरा सिद्ध परमात्मा भी किसी को नमता, कौन किसी को नमे, वो सिद्ध भी किसी को नहीं नमे, ये सिद्ध भी किसी को नहीं नमे। ऐसी महत्ता कही है ज्ञानियों ने, ऐसी महत्ता कही है। अपेक्षा रखना वो दीनता में है, अपेक्षा वृत्ति खुद ही दीन वृत्ति है और क्या है। और अपना स्वरूप देखो तो केवल ज्ञान पर्याय की अपेक्षा नहीं रखे, ऐसा है हमारी केवल ज्ञान की पर्याय की हम अपेक्षा नहीं करें, इतना महान है, क्योंकि वो तो हमारे से अनंत में भाग में है, ऐसी तो अनंत पर्याय पड़ी है स्वरूप में, एक पर्याय की कौन अपेक्षा करेगा। उसमें क्लेश तो होंगे, हम अपेक्षा रखेंगे और ऐसा बनेगा नहीं होगा नहीं तो दुख होगा कि नहीं होगा, क्लेश होगा कि नहीं होगा। बच्चों को माँ बन के नहीं कहना है क्या, नौकरानी बन के कह दो अलग बात है, माँ बन के नहीं कहना है। नहीं, माँ में क्या है कि एकत्व हो जाएगा तो अपेक्षा वृत्ति क्लेश करेगी, और हमारी अपेक्षा के अनुसार अगला जीव का परिणमन हुए ही, ऐसा कोई पदार्थ हमारे अपेक्षा से बंधे हुए तो है ही नहीं, बंधे हुए क्या, कोई नहीं बंधे, बच्चा भी नहीं, बड़ा को क्या बात करें, बच्चे भी नहीं बनते। और हम दुखी क्यों हुए, हमारी उल्टी समझ से तो दुखी होते हैं, सुलटी समझ से दुखी नहीं होते। नहीं, नौकरानी तो क्या है कि उसको व्यवस्था सौंपी है तो व्यवस्था के लिए बोले तो आग्रह नहीं रहेगा, और मेरा बच्चा है तो आग्रह आए बिना रहेगा नहीं, आग्रह होगा उतना कसाई बढ़ेगा, उदय है बस ठीक है, उदय में जो बात सामने आई बोल दिया तो बोल दिया, आगे पीछे इसका लगाव होना नहीं चाहिए। अपनत्व होने से परिणाम चिकने होते हैं, ये जो चिकनापन है उसमें बहुत विभावरस भरा है और स्वभाव से दूर जाने का होता है, और बहुत जीव को दुख देने वाला होता है वो। तो चिकनापन में क्या है, जीव पूरा पूरा बंध जाता है, और रुखापन में बंधता नहीं, खुला रहता है, दूर रहता है। रुखापन में भिन्नता करने का अवकाश है, चिकनापन होते ही भिन्नता होने का कोई अवकाश नहीं है। अरे पूर्ण केवल ज्ञानादि पर्याय, परमानंद के पर्याय सब ले लेना, बीज पर्याय की भी जिसको अपेक्षा नहीं, ऐसा परम निरपेक्ष मेरा स्वरूप है। ऐसे निज स्वरूप की एकाकार भावनावान को भी अन्य कुछ अपेक्षा नहीं रहते। स्वरूप निरपेक्ष निरालंब होने से ऐसे निरपेक्ष स्वरूप की भावना भाने वाले को भी, भावनावान को भी अन्य कहीं अपेक्षा नहीं रहेगी।
भावना भानी कैसी, वो भावना जो आप बोले वो भावना कैसी तरह से भावना?
स्वरूप को देख करके भावना है, देख वो तो बात चली पहले कि भावना कैसे भावना, कि स्वरूप को देख करके। आप कहेंगे कि दिखता नहीं स्वरूप, कि देखो अपने ज्ञान सामान्य को, अपना ज्ञान सामान्य वो स्वरूप रूप है, कैसा है वो स्वरूप रूप है। स्वरूप इससे कोई अलग प्रकार का है ही नहीं, जैसा मेरा ज्ञान वेदन है ऐसा ही मेरा स्वरूप है, इससे दूसरा प्रकार का मेरा स्वरूप नहीं है। और उसमें ये सब बातें हैं, सब विशेषताएं इसमें मालूम पड़ती है भी और मालूम भी पड़ेगी अगर हम देखेंगे तो। देखने का उद्देश्य धारण करके देखना चाहिए, जैसे सुवर्ण पत्थर में मिट्टी के भी रजकण हैं और सोने के भी हैं। खान में से पत्थर लिया, सोने के खान में से टुकड़ा, उसमें मिट्टी के भी हैं और सोने के भी हैं। जो सोने को देखेगा वो सोना देखने का उद्देश्य धारण करके देखेगा तब तो उसको दिखने में आएगा, वरना तो पत्थर ही दिखेगा, सोना नहीं दिखेगा। लेकिन उसमें एक नजर होती है, वो नजर ऐसी होती है कि उसमें उद्देश्य क्या है, मेरे को ये देखना है। ऐसे ऐसे ऐसी हमारे स्वरूप की जो आश्चर्यकारी विशिष्टताएं हैं, ये सब गुण उसमें प्रकट है। एक गुण को अनंत गुण का रूप है, इसलिए हमारे ज्ञान वेदन को पूरे आत्मा के सभी गुण का रूप उसमें आया है।
सामान तो देखने में आएगा, विशेषता किसमें लेंगे?
जी
सामान तो देखने में आएगा, विशेषता किसमें लेंगे?
सामान्य देखने में नहीं आएगा,
सामान्य देखने में आएगा, विशेषता सोने में, पत्थर में सोना देखते हैं वो तो सामान्य देखने में आया, विशेषता किसमें लेंगे किसमें सोना है?
तो क्या है कि देखने वाला उसमें नजर ऐसा करता है कि इसमें सोने के पार्टिकल्स कितने हैं, तो उसको दिखेगा। ऊपर ऊपर से देखेगा तो पत्थर ही दिखेगा, और गौर से देखेगा कि इसमें सोना है या नहीं है तो होगा तो दिखने में आएगा। हाँ, ऐसे हमारे ज्ञान सामान्य ज्ञान वेदन रूप है, उसमें ये सब विशिष्टता है। परम शांत रस है, समरस है, निराकुल सुख है, अंतर्मुक्ता है, और स्वयं के अभेद रूप में वो दिखने में आता है। तो भावना में हमें केवल विकल्प नहीं करना है कि हमारा स्वरूप ऐसा है ऐसा है। हमारे ज्ञान वेदन को अनुभव में लेकर के हमको देखना है कि ये बात हमको अनुभव गोचर हो रही है तो रस आएगा। ये स्वरूप रस है, वो विभाव रस को आने नहीं देगा। जितना आत्मरस होगा और वृद्धिगत होगा उतना विभाव रस टूटता जाएगा, सहज टूटता जाएगा। ऐसे निज स्वरूप की एकाकार भावनावान को, कैसी भावना? एकाकार भावना, तन्मय होकर के भावना करने वाले को भी अन्य कोई अपेक्षा पैदा नहीं होती, किसी से भी उनको अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए ज्ञानी को याचक वृत्ति नहीं होती। हमारे मुनिराज आहार लेने के लिए नगर में आते हैं, फिर भी वो याचना नहीं करते। उनको नवधा भक्ति से बुलाने वाले से ही वो कार करेंगे, जबकि ये मूल परंपरा है। क्या ये मूल परंपरा है? ये परंपरा छूटी और श्वेतांबर हुए तो क्या हुआ? किसी के घर पहुंच जाते हैं, वो तो अन्य मत में भी बाबा लोग जाते हैं, भिक्षान देही माम, हमको भिक्षा दे दो, याचना नहीं करेगा, याचना में दीनता है। क्यों? कि आहार बिना वो जी सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, क्यों याचना करेगा? आहार बिना भी वो आनंद में रहते हैं, और वो परिस्थिति में जब वो रह सकते हैं तो फिर याचना को क्यों करेगा? हमारे किसी से अणबनाव हुआ, एक दृष्टांत ले ले, जिसके साथ अणबनाव हुआ है, ये कोई बहुत मालदार करोड़पति अरबपति है, लेकिन हमारा उनका झगड़ा हो गया, हम क्या कहेंगे? हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम कितना भी पैसे वाला हो अपने घर में रहो, हमको कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे बिना जैसे कैसे भी परिस्थिति में हम चला सकेंगे, लेकिन हम तुम्हारे दबाव में रहना नहीं चाहते। तो अपेक्षा छूट जाती है कि नहीं छूट जाती है? अपेक्षा तो छोड़ सकते हैं हम, कषायवश भी अपेक्षा छोड़ सकते हैं। तो ये तो स्वरूप ही इतना महान है कि कहीं नमता ही नहीं हो, उतना महान है कि कहीं नमता ही नहीं, फिर हम क्यों नमे? इसलिए ज्ञानी होते हैं, मुनि होते हैं, वो याचना कभी नहीं करते, याचक वृत्ति उसको आती नहीं। अपना स्वरूप को देखते हैं ना, महान महान स्वरूप को देखते हैं, तो याचक वृत्ति कहां से आएगी? उसको वृत्ति उठती नहीं, वो उसकी भक्ति करते हैं, अलग बात है कोई, वो याचक वृत्ति नहीं करते। इसलिए वो अपने भक्त से भक्ति की अपेक्षा नहीं रखते, अपने पर्याय की अपेक्षा नहीं रखते, तो दूसरे की पर्याय की अपेक्षा कैसे रखेंगे? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे निज स्वरूप की दृष्टि बिना अन्य द्रव्य भाव में मुख्यता होती है, ऐसी निज स्वरूप की दृष्टि नहीं है तो अन्य द्रव्य में या अन्य भाव में मुख्यता आई जाती है। स्वरूप दृष्टि में तो, स्वरूप दृष्टि में तो स्वयं पोते स्वरूप मात्र, नायक मात्र के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। मैं तो स्वरूप मात्र हूं, ज्ञाता मात्र हूं, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण हूं, मेरी गुण संपत्ति मेरे में पूरी भरी है, फिर दीनता क्यों, अपेक्षा क्यों? ऐसे स्वरूप की भावना में किसी की मुख्यता नहीं आती। हर हालत में जो सुखी है उनको अपने सुख के लिए अंतर सुख में, हर हालत में अंतर सुख से जो सुखी है, अंतर के सुख से जो सुखी है, वो क्यों अपेक्षा दीनता करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत कटाक्ष किया है कि जिसको जैन का केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, इसको हे परमेश्वर तू क्या देगा, क्योंकि मुझे तो मेरा केवल ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं। ऐसा स्वरूप मैं अपने आप को अनुभव करता हूं, इसलिए वो भी अपेक्षा नहीं है, तो फिर कहने की जरूरत नहीं है कि दूसरी कोई अपेक्षा हो गए। स्वरूप भावना में बहुत बड़ा फायदा है, वो इस प्रकार का है। इसलिए अपेक्षा वृत्ति से जीव नीच गति में जाता है, वो गति इसकी बंद हो जाती है। जैसे हम अपेक्षा कर कर के दीन हुए तो मुफ्त में बिके ना, तो निज गति में गए तो मुफ्त में बिके ना। जिसको अपेक्षा नहीं है उसको निज गति नहीं है, बात खत्म। अपने आप को हल्का अनुभव किया तो हल्की गति हो ही जाएगी। अपने आप को, अपनी महानता का अनुभव किया तो तीन लोकनाथ बनेगा, और है भी ये तो बेभानपणा से दीनता में आता है। अपने स्वरूप के बेभानपणा में ही दीनता में आता है। भान में तो स्वभाव परिणाम ही है ही। यहां तक रखे ठीक है।